वीतराग विज्ञान नमोता ही जाते भये अरहंता धीमह जो विद्यादि सागर सुधी सागर सुधी गुरु हैं हितेशी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल गए सयाने केवल ज्ञान पाने पूजून के सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की, सभी लोग विचार कर रहे हैं बहुत दिन से और अपने विचारों में दृढ़ता भी ला रहे हैं। लगातार विचार करने पर यदि हमारे विचारों में दृढ़ता आ जाती है तो फिर हमें ये नहीं कहना पड़ेगा कि क्या करें। जब सत्संग मिलता है, जब धर्म स्थान पर बैठे होते हैं, तब तो सब बातें ठीक जान पड़ती हैं, लेकिन फिर जैसे ही धर्म स्थान से बाहर निकलते हैं, संसार के बीच पहुंचते हैं, तो सब भूल जाते हैं। यदि हमारे विचारों में दृढ़ता आ जाएगी तो फिर हम कहीं भी रहें, किसी भी स्थिति में रहें, और हम अपने उन विचारों को अपने आचरण में तब्दील करते चले जाएंगे। हमने पिछले दिनों संक्षिप्त में अगर देखें, मैं सुबह से सोच रहा था कि यदि पूरे कर्म सिद्धांत को दो लाइनों में कहना हो तो कैसे कहेंगे। तो दो लाइन ऐसे बनाई हमने कि बुरे कर्म से बचना, भले कर्म करना। ठीक है, इतना आसानी से कर सकते हैं, बुरे कर्मों से बचें, भले कर्म करें, और भले बुरे कर्मों के उदय में समता परिणाम रखें। हमने वर्तमान में कुछ कर्म भले करना पड़ते हैं, कुछ बुरे करना पड़ते हैं, तो बुरे कर्म कम से कम करना पड़े और भले कर्म का रेशियो बढ़ जाए, एक तो ये, और जो पहले से हमने बांध रखे हैं, भले बुरे दोनों प्रकार के बांध रखे हैं, तो जब भले कर्मों का उदय आता है, पुण्य कर्म का उदय आता है, तो हम अहंकार कर बैठते हैं, ये भी ठीक नहीं है, और जब बुरे पाप कर्म का उदय आता है तो हम संक्लेश कर लेते हैं, ये भी ठीक नहीं। तो कर्म के उदय में सुख और दुख, दोनों के उदय में हर्ष और विषाद नहीं करना, और जो कर्म हम कर रहे हैं उसमें हमेशा भले कर्म करते रहना। अगर कर्म सिद्धांत इतना भी हम समझ लें तो भी हमारे लिए पर्याप्त है। इससे ज्यादा अगर सारी चीजें भी किसी ने नहीं समझी हो, नहीं समझ में आई हो, तो ये चीज तो कहीं भी बांध करके और सूत्र की तरह अपन रख लें कि जब भी पुराने कर्म उदय में आवे, तो भले कर्म जब उदय में आते हैं तो मैं अहंकार से फूल जाता हूं कि देखा मेरे सब प्रति अनुकूलताएं हैं, मुझे सब प्रकार की सुख सुविधा की सामग्री मिली है, तो मैं फूल न जाऊं, मैं अहंकार ना कर बैठूं, नहीं तो मुझे नए कर्म फिर बंधेंगे और खोटे बंधेंगे। और जब मेरे दुख का उदय आए, पाप का उदय आए, तब मैं दीनहीन होकर के संकलेश ना करूं, बल्कि उन कर्मों को सहन करके, क्योंकि मैंने ही तो बांधे हैं, इसलिए मैं उन्हें चुपचाप सहन करके, और जे कर्म पूरब किए खोटे सहे क्यों नहीं जी रहा, ऐसा विचार करके कि मैंने ही ये कर्म किए हैं, उनको तो सहन कर लूं, तो उस समय संकलेश से बच जावें। बस भैया, कर्म का फल भोगते समय अहंकार और संकलेश से बच जावें, और कर्म बांधने का अवसर आवे तो खोटे कर्मों को कम बांधें। बंधेंगे तो दोनों ही, जब अपन को शुभ कर्म बनते हैं तो साथ में अशुभ भी बनते रहते हैं, ये ध्यान रखना। सात कर्म निरंतर बंध रहे हैं, आयु कर्म को छोड़ करके रोज प्रति क्षण, बस इतना जरूर है कि उसमें पुण्य प्रकृति डोमिनेट होना है कि पाप प्रकृति। अगर अशुभ परिणाम करते हैं तो पुण्य प्रकृति कमजोर पड़ जाती है, पाप प्रकृति प्रबल हो जाती, और अगर माने अशुभ परिणाम करते हैं तो पुण्य प्रकृति प्रबल हो जाती, अशुभ कमजोर पड़ जाती। इतना ही क्लू है उसका, इतना ही प्रक्रिया है और कुछ नहीं। पर बंधते दोनों हैं, अपन अभी धर्म ध्यान कर रहे, अभी अपने पुण्य कर्म की प्रकृति जो बंध रही होंगी वे प्रबल बंधेंगी, उनमें स्थिति अनुभाग बहुत गाढ़ा पड़ेगा, और अभी इस समय भी कुछ अपने कषाय के परिणाम होने से और पाप प्रकृतियों में भी जा रहा होगा कुछ अंश, लेकिन वो बहुत कमजोर, नॉमिनल कहना चाहिए, नेग्लिजिबल, कोई उसका असर ही नहीं होगा, इस तरह की स्थिति रहती है। तो संक्षेप में इतनी बात अपन को समझ करके, और अब अपन आठों कर्मों के लिए समझ ही रहे थे, उसी प्रक्रिया को और आगे बढ़ाते हैं। दर्शनावरणी कर्म कौन से परिणाम से बंधते हैं, ज्ञानावरणी कौन से बंधते हैं, भैया मोहनी कर्म है तो दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी ये कैसे बंधते हैं। आज नंबर आ गया है सूत्र जी के हिसाब से कि आयु कैसे बंधती है। हम मनुष्य हुए हैं तो हमने पहले मनुष्य बनने के लिए क्या क्या पुरुषार्थ करा होगा, तब हम मनुष्य बने हैं। कोई बाहर दिखाई पड़ता है तिर्यंच सुअर दिखाई पड़ता है, तो मुझे बार बार मन में यही आता कि अरे इसको ये पर्याय, तिर्यंचों में भी विभिन्न प्रकार की पर्याय हैं, मनुष्यों में भी विभिन्न प्रकार के जीव हैं, अलग अलग क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले का अलग अलग पुण्य है, धर्म क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले का, जिसने नैनागिर क्षेत्र में जन्म लिया है उसका पुण्य अलग है, और जिसने शिवपुरी में जन्म लिया उसका अलग, और जिसने बंबई में जन्म लिया वहाँ अलग, और बंबई में भी ऐसी कॉलोनी में लाओ जहाँ मंदिर नहीं है तो अलग, और ऐसे घर में लाओ जहाँ रोज मंदिर जावे की परंपरा है, वो मंदिर घर के बाजू में है सो अलग, बिल्कुल अलग अलग। अपन सब में से भी मनुष्य आयु का बंध सबको अलग अलग हुआ है, ये बड़े समझने की चीज है। तिरंचों में भी एक हाथी की पर्याय में भी तिरंच है, घोड़ा भी तिरंच है, और सुअर भी तिरंच है, बताओ तिरंच तो सब हैं, लेकिन सबके अलग अलग आयु बंध अलग है, लेकिन बाकी कर्म भी तो साथ में हैं। आयु तो मनुष्य की मिल गई, लेकिन अब अन्य जो अपन ने पुण्य पाप किए होंगे वो उसके अनुसार हमें स्थान द्रव्य क्षेत्र काल हमें सब उसी के अनुसार मिलेगा। आज अपन आयु पर विचार करते हैं कि ये इसने कैसे पाई होगी। उसमें लिखा है कि जो तिरंचों में भी मायाचारी से तो तिरंच आयु बनती ही है, लेकिन ये सुअर की पर्याय क्यों बनती है, कहते दूसरे का हमेशा दोष ही देखता रहता था, सो आज भी मल खाने में ही आनंद आता है, बताओ, और हमेशा दूसरे के सिर पर बैठने की आदत, सो आज दुत्कारा जा रहा है जगह जगह, सुअर के छोटे से बच्चे को भी कोई पसंद नहीं करता, बाकी कौनों ऐसा जीव नहीं है जिसके छोटे बच्चे को कोई न चाहे, कुत्ता को पिल्ला भी प्रेम से धर ले गोदी में, बिल्ली का बच्चा, सुअर को बच्चा नहीं रखेंगे गोदी में, कोई भी देख लो आप, और बाकी सब जीवों के बच्चे गोदी में रख लेंगे, ऐसी निकृष्ट पर्याय मिली क्यों? क्योंकि हमेशा दूसरे के औगुण ही औगुण देखने में रुचि ली है। बताइएगा आप, अभी कभी अपन इन सब अलग अलग पर्यायों का पढ़ेंगे, एक किताब है अलग से, अगर मुझे उसमें अच्छा समझ में आएगा तो मैं आपको एक आध दिन बताऊंगा कि तिरंचों में भी हाथी बने तो क्यों और घोड़े बने तो क्यों, और मनुष्य में भी अलग अलग परिवार में उत्पन्न हुए और अलग अलग सुख संपत्ति मिली या अभाव रहा, उसके लिए अलग कर्म है इन 148 से, वो भी समझने के, इसलिए समझने के हैं, दूसरे के देख पे के लाने नहीं कि जी ऐसे काय हो गए इनने ऐसा करो हुई है, एक लाने नहीं, हम ऐसे क्यों हैं, हमने ऐसा क्या किया था, इसके लिए है ये। जो अपन समझ रहे हैं ऐसा नहीं हिसाब लगाना कि अब तुमने ऐसा करो ये से भाई ऐसे महाराज बता रहे थे, इसके लिए नहीं, हमने ऐसा किया होगा इसलिए हम ऐसे हो गए। अब देखो अपन जो नारकी जीव है उनने नरक पर्याय कैसे प्राप्त की, देव ने कैसे देव पर्याय प्राप्त की, देवायु कैसे बनती, नरक आयु कैसे बनती, तो एक सूत्र जी का छोटा सा सूत्र दे करके, और व्याख्या बहुत बड़ी है, बहु आरंभ परिग्रह तुम नारक सायुष, बहुत आरंभ, आरंभ किसे कहते, पापकारी को, हैंस्ट कर्म आरंभ हो, हिंसा कर्म में लिप्त रहना यही आरंभ है। घर गृहस्थी के जितने काम हैं वे हिंसा जनित हैं, हाँ जितने दुकानदारी इत्यादि के काम हैं वे सब हिंसा जनित हैं, ये सब आरंभ कहलाता है। जिसमें पांचों पाप होते हैं वो सब आरंभ, और उसके माध्यम से जो अपने अंदर आसक्ति उत्पन्न होती है वो परिग्रह, इतना ही है। हिंसा कर्म करना आरंभ है और आसक्ति होना परिग्रह है। जी जो सामान आमान जोड़ के रखो वो तो परिग्रह है ही, जो हमारे अंदर उसके प्रति ममत्व भाव है वो परिग्रह है। तो कह रहे हैं कि बहुत आरंभ, बहुत हिंसाकारी करना और बहुत ममत्व रखना वस्तुओं से, विशेष रूप से व्यक्ति से महत्व, व्यक्ति से ममत्व होना अलग बात, वस्तु से ममत्व, बौद्ध दर्शन में वस्तुओं से ममत्व को तृष्णा कहते हैं, तो उसको अपन भी यही कहेंगे कि बहुत अधिक तृष्णा और लोलुपता होना, ये परिग्रह है। ऐसा बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह घर गृहस्थी में भी, देखो भैया जितने से काम चले उतने अल्प में काम चला लेना, नहीं तो जितना आरंभ करेंगे उतनी खोटी आयु बनेगी। इसी तरह से जो अपन धंधे करते हैं उनमें भी बहुत आसक्ति पूर्वक न करना, परिग्रह बढ़ते जान करके प्रसन्न न होना, हाँ प्रसन्नता नहीं है, परिग्रह बढ़ रहा है, अरे और बढ़ता जा रहा है क्या करना। हमने तो अपने जीवन में, हमारे अपने प्रोफेसर थे दुर्गे साहब, अभी भी याद आ जाता कभी कभी जब परिग्रह की चर्चा चलती, उस समय 1250 रुपया मिलते थे कुल, इतने बड़े प्रोफेसर को यूनिवर्सिटी में, जी हम 1977 की बात बता रहे आपको, अब तो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को 25,000 मिलने लगे रीडर को, तो वो उस समय असिस्टेंट प्रोफेसर थे उनको 1250 मिलते थे, UCG का ग्रांट बढ़ना था, उसके लिए स्ट्राइक हुई थी प्रोफेसर की, उस स्ट्राइक में क्या था कि 50 रुपए बढ़वाने के लिए हुई थी वो, कि हमारा पे स्केल 50 रुपए इंक्रीमेंट दिया जाए उसका। उस मीटिंग में सिर्फ एक व्यक्ति वो थे जिनने ये कहा था कि पहले ये तय कर लो कि जो 50 रुपए बढ़ेंगे उनका क्या करेंगे, अबे जोन 1250 में भी धरे रह रहे हैं, भी 50 और बढ़ जाए तो मैं करूंगा क्या, ये तो बता दो। ऐसे व्यक्ति को देखा मैंने, उनने कभी साइकिल से आते थे यूनिवर्सिटी, सोचो आप इतने बड़े प्रोफेसर गाड़ी खरीद सकते थे, हमने उनकी दो ड्रेस से ज्यादा तीसरी ड्रेस नहीं देखी, अपने हाथ से हमने उनको पंप रखे रहते थे तो हवा भरते देखा साइकिल में, और पढ़ाने के लिए इतनी मास्टरी कि उनके बराबर कोई नहीं था पूरे इंडिया में, पेट्रोलॉजी पढ़ाते थे,
और उन्होंने 15 साल तक रिसर्च नहीं की, पीएचडी, कहते थे कोई है डायरेक्टर मेरा जो मेरे से ज्यादा जानता हो जिसके अंडर में पीएचडी करूं। फिर 15 साल की सर्विस के पास सेल्फ गाइड बन जाते हैं, तो सेल्फ गाइड बन के पीएचडी की और फिर वो प्रोफेसर हो गए। हमें आश्चर्य लगता है कि आज भी ऐसे लोग हैं जिनकी इतनी कम आसक्ति है, और अपन लोग देखो इतनी आसक्ति पैसे के प्रति, चाहे जैसा धंधा कर लेंगे हाँ पैसे आना चाहिए, अंडा बेचना पड़े तो अंडा बेच लो हाँ। और एक जैनी है जबलपुर में, वो मछली का दाना बेचते हैं, बताइए आप मछली दाना अब काय से बचता है बनता है, मछली पालन होता ना, फिश फार्मिंग, दाना उसका आता है वो खिलाने के लिए मछलियों को, और मुर्गे का दाना बनाते, मुर्गे के दाने में मछली डलती है, मछली के दाने में केंचुआ डलता है, ये वो बनाते हैं बताइए, और वो बेचते हैं फिश फार्मिंग के लिए और आपके मुर्गी पालन के लिए। उनके यहां बड़ी भारी फैक्ट्री लगी पैसे के पीछे। अपने यहां पर भी जैनियों ने धीरे धीरे करके और क्रूर कर्म जिनको खर कर्म कहते हैं उनको अपना लिया, जंगल जलवा करके कोयला बनवाना, ईंटों के भट्टे लगवाना हाँ, ये सब खर कर्म है। आतिशबाजी के धंधा करना ये खर कर्म है, क्रूर कर्म है, इसमें कोई लाभ नहीं। देखो दो प्रकार का पाप होता है, एक प्रयोजन वाला पाप है और एक निष्प्रयोजन पाप है। अपन घर में आगे जलाते हैं, प्रयोजन है कि रोटी बनाएंगे, मगर आतिशबाजी में आगे लगाए में कौन सो प्रयोजन है, या बताओ हमें बताओ, आगे पीछे कोई लाभ है का? इतने तो अपन ने चूल्हो जलाओ तो लाभ है कि भैया दो रोटी बने हैं तो पेट भर है, और आतिशबाजी में आग लगाई उसमें कोई लाभ है क्या? कोई लाभ नहीं है। इसलिए ये खर कर्म कहलाते हैं। लाख का धंधा करना, लाख की चूड़ियां बिकती हैं, लाख कैसे बनती है? अनंत जीव राशि का घात होता तब लाख बनती है, और लाख का धंधा कर लेना, मुझे पूरे 15 के नाम याद नहीं है पर इसी तरह के हैं, जिसमें आजकल ये जो फिश फार्मिंग है, मछली पालन है, मुर्गी पालन है, अंडे का धंधा है, ये सब सरकार लोन देती है, बताओ उधार देती के खोलो तो हम उसके लिए देंगे, सब्जी बेचने वालों को लोन नहीं देगी, अंडा बेचने वाले को लोन देगी, बताओ पैसे देगी। तो ऐसे कर्म करने से क्या मालूम पड़ता है कि हमारी आसक्ति बहुत है, ये सब नरक जाने के उपाय हैं। भैया पैसा तो दो पैसा तो सब कमाऊ, को नहीं कमाऊ, कौन को काम चलग पैसा के बिना, लेकिन हिसाब किताब से कमाना, आरंभ करना तो हिसाब किताब से, ज्यादा नहीं विस्तारो। देखो हम आपको बताएं बहुत सरल सी चीज बताएं कि देखो चार कटोरी रख लें, एक गिलास रख लो, रोटा रख लो, थाली रख ली, अब इतनी चीजें रखते और भोजन कर रहे तो उतनी मांझने पड़ के नहीं, उतनी हिंसा होगी कि नहीं? और अगर चार कटोरी की जगह एक में काम चला लो भैया तो तीन ने मांझने पड़े कम हो गई कि नहीं? लेकिन अपन क्या करेंगे, नहीं चार अच्छा लगेगा, हम बड़े आदमी हैं, बड़े आदमी हैं तो भैया चार नहीं 40 कटोरी में खाएंगे हम, अलग अलग चीजें अलग अलग धर के, नहीं तो पहले भैया अपने थाली में परस वाला उसे तई तनक चटनी धरी, तई नॉन धरो, तई दार परस दो, तई जो धर दो, सब अपने धर गई अपने खा लिया, ये कहीं मांझना पड़ेगी, ज्यादा आरंभ नहीं करना पड़ेगा। अपन ने अब क्या किया घर गृहस्थी में, नहीं हम आपको बहुत बहुत सामान्य सी बात बताने का हमारा मन होता, ये धर्म की चीजें अपन सामान्य रूप से नहीं समझते, इसलिए ये किताबों में लिखी रह जाती, किताब में तो इतनी सी लिखी कि बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह नहीं करे चाहिए। अब आचार्य श्री कहते कि ये त्यागी व्रति अच्छी बिछा के बैठो, क्यों? अब देखने वाले को लगेगा कि देखो अच्छी बिछा के बैठ रहे, इनको इतनी आसक्ति है, आसक्ति नहीं है, जितने कपड़ा मेले कर हो उतने साबुन सोडा लगे उतनी हिंसा हुई है, जी विचार तो करो हाँ, नहीं हम तो बड़े निष्प्रय हैं, दूरा में बैठ गए, लोग देख रहे गए, देखो कितने निष्प्रह है इनकी, देखो चटाई टाई के बिना अच्छे धूरा में बैठ जाएगी तो सुनिए इनको जाने। मगर धूरा में बैठ तो रहे हो, कपड़ा खराब करो तो धूप हो तो तुम्हें, और साबुन सोड़ा लगे तो जितो पानी नाली में साबुन सोड़ा को जे उत्ती हिंसा हो। ये सब आरंभ कहलाएगा। घर गृहस्थी में अपने जीवन यापन के लिए कम से कम आरंभ करना, जितने से काम चल जाए, पहनने ओढ़ने के कपड़ों से, खाने पीने की चीजों से लेकर सब में, और इसी तरह व्यापार में, भैया पैसे कमाना है लेकिन मैं ऐसा धंधा करूंगा चाहे चार पैसा ज्यादा रेट बढ़ा दूं भले ही, हाँ लेकिन चीज साबुत बेचूंगा, चीज ऐसी बेचूंगा जिसमें कम हिंसा होती। पहले जैनी लोग हीरे जवाहरात सोने चांदी का धंधा करते थे, सबसे बड़ा व्यापार था एक। उसके बाद दूसरे नंबर पे व्यापार था कपड़े का, और एक के बाद कोनी धंधा में है तो अब तो जूता चप्पल तक बेच दे को धंधा जैनियों के हो गए। तो भैया जिसके जूता चप्पल बिकते हो गए, चाहे चमड़े के हों चाहे कपड़े के हों, चाहे साहू जी आए थे शांति के छोटे भैया श्रेयांश और अशोक साहू, अब दोनों नहीं रहे थुवन जी में, कौन से सन की बात है तो हमें ध्यान नहीं आ रहा, 87 की बात है। तब आहार देने के लिए आचार्य जी को आए, जैसे ही आचार्य जी ने देखा कि वे आहार देने वाले हैं, वैसे ही जो है जल्दी से पानी पी के बैठ गए। पहले दिन इतने बड़े आदमी को अंजलि बंद कर ले हैं तो इंसल्ट हो जाए, तो कि पहले ही होगा पूर्वाहार, होगा आहार होगा है। अब उनने सोची आज तो आहार होगा कल दे ले हैं। दूसरे दिन गए, दूसरे दिन भी जो है फिर तो स्पष्ट उनके देखने में आ गया कि हमारी वजह से बैठ गए। सबको धीरे से देख लिया लोगों ने कि महाराज आज तो आधे ही आहार भय थे, और जैसे ही भी आए देवे और बैठ गए, उनसे लेना नहीं है। अब जाके आचार्य श्री से पूछा कि मेरे से आप आहार नहीं लेना चाहते क्या? कहते कि आपके यहां पर कैराना शूज तो आपकी है, कैराना शूज है उनके, हाँ उसमें शेयर थे उनके 30%, 20% शेयर थे कैराना शूज, शूज में चप्पल और जूते भले ही कपड़े के बनते हैं लेकिन आप इस तरह का धंधा करते इसलिए आपसे नहीं लेंगे। तो महाराज कैसे लोगे आप ये छोड़ दोगे? महाराज इतनी जल्दी कैसे छोड़ेंगे, लेकिन हम अपने शेयर कैंसिल कर दें अगर तो, कैंसिल कर दो तो हम कल ही ले लेंगे। फौरन फोन किया वहां से, वो निकाल के उस समय तो चला ही चला था, वो बटन वहीं दबा करके बुलाओ, पूरे दिल्ली से सब आ गए और सारे कागजात के आचार्य श्री के सामने बैठ के मैंने सारे शेयर्स कैराना शूज के वापस खत्म किए, जितने अभी हैं वो साल भर चलेंगे पर आगे के लिए सारे शेयर्स खत्म कर दिए, आचार्य श्री ने हाल ले लिया। भैया जिसके यहां पर इस तरह का धंधा कर चलता हो छोड़ दो, तभी आप पूजा प्रक्षाल और आज छोड़ दो, साल भर में छोड़ दो। हम तो कहते, हमारे पास चर्चा आई कि महाराज हम चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है आपके परिणामों में निर्मलता आई, आप आहार इत्यादि देना चाहते, लेकिन विचार कर लो, सब समाज के सामने कह दो कि अब हम इस धंधे को छोड़ रहे, साल भर के अंदर जितो स्टाक है सब खाली करके अब नौने ले हैं, का जिंदगी भर करत रहे, जो आज ने छोड़ पे तो कभी छोड़ हो आप, कबू में छूट है वो तो हमेशा बढ़ता जाएगा, और दूसरों कर लो। अरे भैया हम तो दूसरे लोगों को, हमने मुसलमान तक को अंडे की दुकान बंद करवा करके और सब्जी बेचबे को सलाह दी, और अपने जैनी आदमी को ने सलाह देंगे हम, उसने तो छोड़ दी कि हम, हाँ महाराज आप कह रहे तो अंडा की बंद और हम फल फूल की दखें ली, लेकिन जैनी हम आए थे से फल फूल खरीदें, हमने कही जी गारंटी तुम आए थे से खरीदें तुम्हारी दुकान चलेगी, लेकिन अंडा की बंद कर, उसने बंद कर दी, और अपन दूसरा धंधा विस्तार लो भैया, नहीं तो ये सब नरक आयु के बंध के कारण है, क्योंकि धन पैसा के प्रति आसक्ति बहुत प्रकट हो रही, अपना अहित जानते हुए भी और थोड़े से धन पैसे के लिए और ऐसा धंधा करना जिससे हिंसा बहुत होती है, सब
सब उसी में आएगा, नरक आयु के बंध का कारण। अकेले सूत्र जी बांच लेने से कुछ नहीं होता, जरा उसका विचार तो करो कि कैसी कैसी चीजें और भी बहुत से इसमें कारण दिए हुए हैं, उन पे भी अपन विचार कर लें, उनसे बचना चाहिए, कम से कम नरक आयु से तो बचो। फिर अपन विचार करेंगे तिरंज से बचो, और फिर विचार करेंगे कि मनुष्य कैसे बने थे अपन। अगर हम नरक और तिरंज आयु से बच गए तो समझ लो दो ही बची, देव और मनुष्य आयु। सो मनुष्य आयु में भी धर्म करने के बहुत साधन है और देव में भी है। जैसे ही देव आयु मिलती सो सबसे पहले अभिषेक और पूजा करने के भाव होते हैं देवों के, ये ध्यान रखना। मिथ्या दृष्टि हो चाहे सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि देव जिनेन्द्र भगवान की पूजा कुल देवता मान करके करता है, और सम्यक दृष्टि तो वीतरागी भगवान की पूजा वीतरागी मान करके करता है। देव में पैदा होते ही अंतर मुहूर्त के बाद पहले नंबर अभिषेक और पूजन का सौभाग्य मिलता, वहां धर्म के बहुत अवसर हैं, लेकिन नरक में और तिरंच में तो धर्म के अवसर ही नहीं है। उन आयु के बंध से अपन बचें, क्योंकि ये ध्यान रखना आयु बंध किसी भी क्षण हो सकता है, और जैसे परिणाम होंगे वैसे ही आयु बंध जाएगी, फिर बदल नहीं सकते। और कर्मों में रद्दो बदल संभव है, आयु कर्म बंधने के बाद चाहे राजा सैनिक हो, साथ में नरक की बांध ली तो जाना पड़ेगा। तीर्थंकर प्रकृति भी बांध ली, छायक सम्यक दर्शन भी कर लिया, इतनी विशुद्धि पर नरक नहीं छूट सकता। साथ में से पहले में आ जाओ भले ही, मगर रहने पड़े। 84,000 वर्ष की आयु सबसे कम आयु मिली पहले नरक की, मिल गई थी 33 सागर की, उसमें कम कर ली अपने परिणामों से, लेकिन बच नहीं सके। इसलिए इस आयु कर्म के प्रति बहुत सावधान रहने की आवश्यकता। 7 कर्म हमेशा बंधते हैं, आयु कर्म एक निश्चित अवसर पर बनता है, और 8 अवसर आते पूरे जीवन में हर आदमी के, 8 मौके आते आयु बंध के, उनमें ही कभी बंध जाएगी। वो तिरंच बंध गई अब बदल नहीं सका, नरक बंध गई अब बदल नहीं सका। इसलिए बहुत सावधानी। नरक आयु कैसे बंधती, एक तो हमने बता दिया कि बहुत आरंभ ने करना और बहुत परिग्रह ने करना, दोनों के लिए हो गया। आरंभ करने वाले घर गृहस्थी वाले, और परिग्रह करने वाले जे दुकान वाले, दो ही दोनों के लिए है। और उसमें भी परिग्रह भी कैसा, जिसमें बहुत हिंसा हो रही वो परिग्रह, और ऐसा आरंभ जिसमें बहुत हिंसा हो रही। अब आज 14 है, फुर्सत है, आज तो सबरी कपड़ा निकालो और साबुन लगा के सब दो खंडार दिए, ये सोने विस्तार लियो जी, ये बता रहे हम आपको। आज फुर्सत है, आज इतवार है, सो आज फुर्सत है, आज सबरे घर गृहस्थी की सफाई कर लो। अरे भैया 8-14 तो न करो कम से कम, कैसे साफ सफाई में हिंसा ही तो होने और का होने। और ऐसे रखो, हम आपको बहुत घर गृहस्थी जैसी सलाह हमने, चौका वासन करो है, जाने समझियो को नहीं करो। हाँ दुकान भले नहीं चलाई हमने, चौका वासन खूब करो, मताई की अकेले ही हम मोड़ी कह लो चाहे लड़का कह लो हते, सो सब काम करो हमने, तो जी जी का जी का बना के जाने रोटी हमने बनाई। हाँ पर कैसे कैसे, हम आपको इसलिए कह रहे हैं कि सावधानी पूर्वक करना तो सब है। घर गृहस्थी में कुआ छोड़े दी, हम कह दें कि छोड़ दो सो छोड़े दी, नहीं करना सब है, लेकिन सावधानी पूर्वक करना। जीव राशि कम उत्पन्न हो चौकी में ऐसी पहले से ही रखो, जीव राशि उत्पन्न हो जाए फिर साफ सफाई करने पड़े तो हिंसा ज्यादा है। और अपन ने पहले से ही ऐसी अच्छी चगन मगन रखी कि जीव ही नहीं पैदा भाई, जीव ही पैदा नहीं भाई, सो मानने नहीं पड़ो। ये है असल में अपने यहां पर सब सब क्रियाएं लिखी हुई हैं, लेकिन सावधानी पूर्वक। व्यापार करना है लेकिन व्यापार में हिंसा कम से कम हो, मेरा धंधा भी चल जावे, मेरे 2 पैसे की इनकम भी हो जावे, और भैया किसी जीव की क्षति भी न हो। अरे इससे अच्छा उपाय क्या हो सकता, ऐसा उपाय विचार करके करना चाहिए। और कहती अत्यंत लोभ के परिणाम और दयाहीन परिणाम, जिसके दया के भाव नहीं है। देखो एक तो अपन दया भाव रख करके पाप करते हैं, और दूसरा दयाहीन होकर के पाप करती, दोनों में बहुत अंतर है। हमारी इच्छा तो नहती के ऐसो करने पड़े, लेकिन करने पड़ रहो। दया तो बहुत आ रही है, लेकिन अब क्या करें, घर गृहस्थी में करना पड़ रहा है, ऐसा भाव इसमें अलग है। और एक तो अरे कछु नहीं होता है, सब घर गृहस्थी में सब चलत है, मरण दो कछु नहीं, ऐसे भाव से कर रहे तो कितना अंतर हो गया। ये भैया हमें करने ने पड़े, मानने ने पड़े। आचार्य श्री के बारे में है कि वे खेत पे उस दिन नहीं जाते थे जिस दिन दवाई छिड़की जाती थी खेत में, उस दिन खेत ही पे नहीं जाते थे, घर से निकलते के जा रहे खेत पे और दिन भर इतने उतरे घूमत घामत संजा को वापिस, कहे तुम खेत पे गए थे? हाँ गए थे, तो दिखाने तो हो ही नहीं है, आज दवाई छिड़की जा रही थी सो हम नहीं गए। बस आज दवाई छिड़की जाएगी तो हम खेत में नहीं जाएंगे, क्यों? हिंसा होगी और हमसे नहीं देखी जाएगी। ऐसा जो है अपने आप को बचा लेना, कहती कि दया शून्य परिणाम नहीं होना चाहिए, जिसके दया शून्य परिणाम है उसके नरक आयु का बंध और भी बहुत सारे दिए हुए हैं, और इसमें और विशेष रूप से जो दिया है वो हम कल भी शाम को बता रहे थे कि ये इसमें भी एक कारण है, त्यागी व्रतियों को लड़वा देना, ये एक कारण नरक का कारण है। आपस में मुनि महाराजों के की एक मुनि महाराज से दूसरे की निंदा करना, हाँ बैठ करके, वे तो ऐसो करत है, वे तो ऐसो करत है, महाराज आप बहुत अच्छे हो, फिर उनके पास बैठे सो इनकी क्या दई, वो तो यार रेसरा भक्त आपका समझ रहे, कैसे भी महाराज से बात करने को मौका मिले अब कछु तो मिले, तो इस तरह इसमें भी नरक आयु बंधती। यति समय भेदा, राजवार्तिक में लिखा पढ़ करके हम दंग रह गए कि हाँ ये तो पंचम काल में बहुत देखने में आता है, एक साधु के सामने दूसरे साधु की निंदा करना और उसमें आनंद लेना और परस्पर एक दूसरे में भेद करवा देना त्यागी व्रतियों में। अरे आप त्यागी जी बहुत अच्छे हो, भी हमारे एक त्यागी जी आए थे, अरे बिल्कुल नष्ट ऐसा कह देंगे, आप तो बहुत अच्छे हो, सो इन त्यागी इन ये त्यागी जी भूल गए क्या? अरे वाह बहुत अच्छे रहो, अब उनकी तो वैसे हम जाना थे, वैसे उनको भी त्यागी जी हैं सही है, सो इनने भी समर्थन कर दो, दुई जनों ने नरक आयु को बंद कर लो, बहुत संभल करके। हाँ भैया ये लिखा है इसलिए हम उसको ज्यों कहते हो, आपको कोई ऐसा नहीं कह रहे कि आप ऐसा कर रहे हो, लेकिन ऐसा मन में भाव आ जावे तो हाथ जोड़ लेना दूर हट जाना कि भैया ये प्रपंच में नहीं पड़ो अपन, क्योंकि इससे अपने नरक आयु बंधेगी। तीर्थंकर की और तीर्थ की आसाधना करना, जिस तीर्थ में जिस कुल में जन्म लिया है उसी कुल को दोषी ठहराना, उसका गौरव न होना, मैं जैनी हूं इसका गौरव न होना, और बल्कि अपने ही धर्म की निंदा करना, धर्मात्मा की निंदा करना, सब नरक आयु के बंधे। हमारे धर्म में तो ऐसा ही है, ढकोसला है, हमारे धर्म में बहुत खराबियां हैं, नहीं कहना हमारे तो धर्मात्मा, हमारे तो साधु भी सब बिगड़ गए, सब शिथिलाचारी हो गए, भ्रष्ट हो गए, नहीं कहना। क्या करना अपने अपने नरक आयु बंधेगी फोकट में, उनको जो कचू हो रहा उसे भी तो जा ही रहे अपन और संगे उनके जा रहे, वो तो गलत कर ही रहे अपन उनके गलत को देख देख करके अपना चित्त खराब करके नरक आयु। बहुत सावधानी की आवश्यकता है भैया, कर्म बंध तो कोई को नहीं छोड़ता, हाँ इसमें रियायत बिल्कुल नहीं है, आग में हाथ डाला है सब, चाहे छोटो बच्चा हो, चाहे अज्ञानी हो, चाहे जानकार हो, जले बिना न रहे, और मिट भी जे है तो दाग बनो रहे जले को। हाँ कर्म का भी बिल्कुल ऐसा ही हिसाब है, किसी को नहीं छोड़ता कि आप बड़े आदमी हो भैया तुम्हें माफ कर दो, तुम जानत नहीं थे, अब कोई बात नहीं आगे ने करी है, वो तो जो करो सो तुरंत बन गया। अब देखो तिरंचायु के बंध के, तिरंचायु माया तैरग्यो नश्य, मायाचारी करने से तिरंचायु बनती है, अत्यंत ठगी प्रवृत्ति, चाहे व्यापार हो चाहे और दूसरी जगहों पर ठगने का भाव न करना, दो पैसे ज्यादा ले रहे सो स्पष्ट कह दो ना कि दो पैसा ज्यादा ले रहे, भाई लेने हो तो लियो, न लेने हो दूसरी दुकान देखो, लेकिन इनसे इतने में इनसे उतने में। लोग कहते कि हमें भाव ताव करना पड़ता, महाराज भाव ताव के बिना चलते ही नहीं, जब 40 की चीज 80 की बते हैं तब धीरे धीरे 50 में बिके, क्यों? आपने अपने अपने दुकान की प्रामाणिकता बनाई नहीं, चार दिन लौटेगा पांचवें दिन कहेगा कि भैया इनके तो एक ही चीज है, ये तो मूल भाव करते ही नहीं है, जितनी कह दई सो कह दई, अब लौट जाओ सो लौट जाओ, आज दिन भर कोई नहीं आए सो नहीं आए, क्या लाएगा परसों आएगा, आएगा वो समझ जाएगा कि ये तो इतनी बोल दी माने बोल दी, अब उसमें घटाने का काम ही नहीं, 40 की भैया 40 में दे रहे, 50 बताखे 40 में देने का नहीं हम आए थे, तो 40 की 40 में दे रहे, कोई मायाचारी नहीं, कोई छल कपट नहीं। हाँ, एक बार बनाना पड़ेगा अपनी प्रामाणिकता, नहीं तो ये छल कपट हमें कहां ले जाएगा। अगर उस समय हमारे आयु बंधेगी तो तिरंच आयु बंधेगी। बहुत सावधानी की आवश्यकता है। अति निकृति, बहुत अधिक निकृति अर्थात वंचना, बहुत ठगने का भाव, अच्छा और जी निरंतर चलता रहता है, अब ऐसा करूंगा, अब ऐसा करूंगा, हिसाब किताब 24 घंटे करते तो थोड़ी देर खोए कार्य, लेकिन उसका मन में प्लानिंग चलता रहता है, वो आयु बंध में कारण बनता है। उस समय निरंतर सोते समय भी बताइएगा, बस इतनी गुंजाइश है कि आयु कर्म सोते समय नहीं बंधेगा, इतनी तो छूट है, बाकी कर्म तो सोते समय ही बंधते हैं, आयु नहीं बंधेगी, बस इतना। और आयु तीव्र परिणामों में आयु नहीं बंधेगी, जघन परिणाम में आयु नहीं बंधेगी, मध्यम परिणाम होंगे तो आयु बंधेगी। इतना थोड़े से नियम है कुछ उसके आयु बंध के, क्योंकि हो सकता है कोई बहुत त्यागी व्रति हो और किसी क्षण कसाय के उदय में बहुत तीव्र परिणाम हो जाए तो उसको तो खोटी आयु बन जाएगी, उसकी तो हानि बहुत हो जाएगी। और कौन बहुत पापी आदमी है और थोड़ी देर को मंद परिणाम भय उसके आयु बंध जाए तो उसको तो बहुत बेनिफिट है। कहते नहीं, दो ही खो ऐसा नहीं करेंगे, बहुत मंद परिणाम और बहुत तीव्र परिणाम में आयु नहीं बंधेगी, बीच के मॉडरेट वो फिक्स है उसका, लेशिया के मध्यम परिणाम होंगे तभी आयु बनती है। तो लेकिन अपने को हमेशा सावधानी रखना पड़ेगी कि क्या पता कब कौन से परिणाम हो जाए और आयु बन जाएगी, कह नहीं सकते हैं। अति संधान प्रियता, छिद्रान वेशन, ढूंढ ढूंढ के देख रहे, का कमी है इनकी, बताओ। जे भी मायाचारी है, जे भी तिरंचायु के बंध का कारण है, सिर्फ दोष ही दोष देखना दूसरे के, कबों इनको अच्छो दिखाते ही नहीं है, हमेशा खराबी दिखेगी। जो इतने ऐसो नहीं है, वो होते ऊँसो नहीं है, जो तुमने ऐसो नहीं करो, वो तुमने ऊँसो नहीं करो। अरे भाई, तुम संसार के प्रपंच के सुधार भी खो आए कि अपनी जिंदगी सुधार भी आए। अति संधान प्रियता, बहुत अधिक दोष देखने की जो क्रिया है वो भली नहीं है, मायाचार तिरंचायु के बंध का कारण है। भेद कारण अनर्थ उद्भावनम, परस्पर एक दूसरे जीवों के भेदभाव करवा देना और अनर्थ उत्पादित करवा देना, उनको आपस में लड़वा देना, यह देखो जी पशुओं को आपस में लड़वाते हैं जी, तिरंचायु का बंध करते हैं। हाँ, ऐसे ही इन्होंने लड़वाया होगा, पहले से तिरंच बने, अब फिर उनको लड़वाया जा, पशुओं को लड़वा के खेल दिखाती ना, ये क्या है, ये है अनर्थ, अनर्थ उद्भावनम, परस्पर एक दूसरे को लड़वा देना, उनसे उनकी कह दई, उनसे उनकी कह दई, दो जने लड़ गए, अपन खड़े देख रहे, खड़े का देख रहे, आयु बांध रहे, अगर तो माया तिरंच आयु बंधेगी। ऐसे बंधती है तिरंच आयु, ये पशु क्यों बनते हैं, क्यों तिरस्कार होता है इनका निरंतर, क्योंकि हमने वैसे कार्य किए हैं तो फिर वैसा। और कहते अब जाति कुल शील दूषणम, किसी के भी जाति में कुल में शील में दोष लगा देना। हाँ, ये बहुत सावधानी, अपने को बहुत ऊंचो कुल, हमारी जाति सबसे, हम खंडेल वाले सबसे बड़े, हम परिवार बहुत बड़े, हम फलाने बहुत, हमारी जाति बहुत ऊंची, बाकी लोगों की जाति तो बहुत नीची, जी इसमें न पढ़ना। हाँ जी, हम आपको बिल्कुल खुली बात है कह रहे, हम ऐसी बहुत कम कहते हैं। आचर्षी से किसी ने कहा कि जी खंडेलवाल, पोरवाल, पल्लीवाल, बाकरीवाल, फलाना, आचर्षी कहने लगे भैया हम नहीं जानत, जी सब बालें हटा दो, सो बाल हटाओगे सो हाल बन जाएगा, सो सब जने बैठ जाइए। बाल का मतलब अंग्रेजी में दीवाल कहा, बॉल कहते ना, दीवाल को कहते, तो उसमें सब में लगे थे, उनने एकदम लाइन से बोले कि इतने होते कासलीवाल, खंड पोरवाल, पल्लीवाल, बाकलीवाल और दुनिया भर के बाल 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 कहे, सो आचार्य ऋषि कहने लगे ये सब बालें गिरा दो, सो हाल बन जे, सो सब जने इकट्ठे बैठ जाओ, वैसे ही तो थोड़े से हैं और जी अलग अलग अन्य हो, सबको जोड़ करके चलो, किसी के कुल को, किसी के शील को दोष न लगाओ। हाँ, ये ध्यान रखना, नहीं तो अपने को स्वयं को तिरंचायु बंधेगी। हमारा कुल ऊंचा है, दूसरे का नीचा, इसकी क्या आवश्यकता, हमारा ऊंचा है बस, दूसरे का नीचा क्यों कहना, तुम जानो तुम्हारा काम? ऊंचा कुल वो है जिसमें रत्नत्रय की परंपरा है, सो कुल ऊंचा है। जिसमें व्यसन नहीं होते सो कुल ऊंचा है। जन्म से ऊंचा नहीं होता, कर्मों से ऊंचा होता है, ध्यान रखना। अगर ऊंचे कुल में जन्म लेके हो व्यसनी हो गए तो काय को ऊंचो कुल है, ये ध्यान रखो। पापकारी जहां पर अधिक हो रहे हैं वो ऊंचा कुल नहीं है, जहां धर्मकारी होते हैं वो कुल ऊंचा है। तो अपन तो सब धर्मकारी कर रहे हैं भैया, तो अपना कुल तो ऊंचा ही है। क्यों अपन किसी के कुल को नीचा कहें? किसी चारित्रवान पे दोष नहीं लगाना, चारित्रहीन को चारित्रहीन नहीं कहना। वो हो रहा हो आवे सपन को का करना, नहीं तो तीन चीजें लिखी, जाति कुल शील संदूषणम। अपन लोग दूसरे के चारित्र में जल्दी से फटे में टांग अड़ावे की आदत है। वैसे ही तो आदमी दुख में है और उसमें और काय उनको ऐसा हो गओ, उनकी मोड़ी को ऐसा हो गओ, उनके लड़का को ऐसा हो गओ, यही में। हाँ, अपने अपने अंदर नहीं देखेंगे कि हमारा चारित्र कैसा है, दूसरे का चारित्र कैसा है, इसका देखेंगे। ये सब तिरंचायु के बंध के कारण हम तो ये बता रहे हैं। हम आपको फिर जो कचू करने सो करो, हमें क्या करना। और विसंवाद तू तू मैं नहीं करना, छोटी छोटी जहमाई आए बा तुम्हारी आए, नहीं भैया लड़ो नहीं ले लो। एक बार की घटना सुनाते और बस है। और अब इसमें और बहुत सारे भले गुणों का लोप कर देना और मिथ्या जीवनम अर्थात मिथ्या आजीविका करना, वो याद आ गया हमें कि कैसे अपन जो है और आज वर्तमान में और लड़वा देते हैं या कि परस्पर संक्लेश विषम बात करवा देते हैं, उससे तिरंचायु बंधती है। दो वृद्ध बैठी बातें कर रहे थे आपस में, कहले आज के कैसे नौजवान हो गए, जल्दी से जोश में आ जाती, जल्दी लड़ बैठती है, अपन तो जानते ही नहीं है कैसे लड़ो जात। सो एक एक वृद्ध थोड़े होशियार थे, कहले हम सिखा सकत तुम्हें लड़वो। कहने बताइयो हमें कैसे लड़ो जात, हम तो जानते नहीं है बिल्कुल। तो दूसरे दिन आए वो और एक कटोरा रखा था वहां सामने। अब उनको तो बताना था कि कैसे लड़ा जाता, सुनने जाई बता दी कि देखो जो कटोरा आए तो तुम आओ, मनो हम कहें कि हम आओ आए। सुबह से लड़ाई शुरू हो जाए, कहने हो करो देखो अपन लोग कैसे लड़ो जात। अब लड़ाई सीख रहे वे, तो वो कटोरा रखा था जिसका था तो वो तो कुछ नहीं बोल रहा था, जिस बूढ़े का नहीं था वो कहता कहना जो कटोरा हम आवा है तुम कब ले आए हमारे घर से जो। अरे कहना झूठी ने बोलो हम ही रो आए जो, तो हम काहे को तुम्हारे घर से ले आए। कहना नहीं जी तुम हमारे घर से लाए और झूठी बोलते हो जी, हमारा कटोरा है और आज तो तुमने अगेलो कटोरो चुराओ और कल पता नहीं और काका चुरे हो तुम। और चार बातें और सुनाई जिनने चुपचाप सुन ली। कहना भैया तुम तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे, हम ही रो कटोरा और हम ही को तुम ऐसे ही कह रहे बड़े प्रेम से, सामने वाले को गुस्से नहीं आ रही इतनी बातों के बाद भी है। अब बहुत देर हो गई लेकिन कुछ बात ही नहीं बढ़े, एक तरफी से बढ़ती नहीं, दोनों तरफ से बढ़ो चाहिए। अब दूसरी तरफ बालो, फिर जब बहुत उनने कही कहना नहीं हम ही रो आए कटोरा और हम तो ले जा रहे, कहना भैया हमें नहीं लड़ने तुम आवाए सो तुम ले तो जाओ। अब ऐसे व्यक्ति से का लड़ाई होवे, ऐसे परिणाम अपने हो जावे, हमारा कहने का आशय ये है और कुछ नहीं। ये तो छोटी सी घटना है लेकिन अपन तो छोटी छोटी चीजों को लेकर के स्वयं भी जो है संक्लेश कर लेते, विसंवाद में पड़ जाते हैं। विसंवाद करना ही तिरंचायु के बंध का कारण है। इस तरह से हमने थोड़े से इन कारणों पर विचार किया। अपन को अपने परिणाम हमेशा हिंसा से और आरंभ परिग्रह से और मायाचारी से बचा करके रखना चाहिए, नहीं तो ये दोनों खोटी आयु हैं, नरक आयु भी और तिरंचायु भी। इसी भावना के साथ कि अपन के परिणाम अच्छे होंगे, बोली आचार्य गुरुवर विद्या सागर में। हे गुरुवर शाश्वत वह शिव के निष्कंटक पद में विषकंटक होता हो, तव शांत निराकुल मानस तुम
दिया।